ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक में किफायती आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली, विद्युत क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक स्थलों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स को मंजूरी दी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज द्वारिका सेक्टर 8 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर आज दिल्ली विधानसभा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली सचिवालय में बैठक की। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में किफायती आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली, विद्युत क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक स्थलों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
हमने सोचा है कि कैसे कैसे चीजों को हल किया जा सकता है। पावर के डिपार्टमेंट में भी इसी प्रकार से कुछ चीजें हमारी पेंडिंग चल रही थी, उसको हम आज बैठे हैं, विचार किए हैं, लेकिन जस्ट इनफॉर्मल सारी चीजें हैं। हम बहुत सी चीजें फॉर्मली आगे लेकर के आने वाले हैं, चाहे उसमें फिर GDA पॉलिसी है, पुलिंग पॉलिसी है, जो लीज होल्डर्स हैं उनको फ्री होल्ड करने के लिए पॉलिसी बनानी है, प्रकार के जो सारे इश्यूज हैं खास करके लैंड से जुड़े हुए, उस सब पर विचार किया है और बहुत जल्दी दिल्ली वासियों को एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन के नाते से कई सुविधाएं जो आज तक समस्याएं बनी हुई हैं उन को खत्म करके सुविधाएं सारी देंगे।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली ने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा जब कोई केंद्रीय मंत्री सचिवालय में आकर लोगों के मुद्दों पर चर्चा करे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बैठक में जमीन से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों जैसे लीज होल्ड, फ्री होल्ड, लैंड पूलिंग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इन सभी विषयों के लिए एक मास्टर प्लान लाने पर चर्चा भी हुई
और वर्षों से पड़ी हुई इन सारी समस्याओं को समाधान देने के लिए आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के साथ में हमारे पूरे मंत्रिमंडल की चर्चाएं हुई, अधिकारियों का आपस में संवाद हुआ और एक कॉमन जो दिल्ली की समस्या का समाधान कर सके ऐसे सभी विषयों के लिए पॉलिसी मेकिंग जल्द से जल्द यहाँ आए, जल्द से जल्द मास्टर प्लान पे का डिक्लेरेशन हो और सब दिल्ली वासियों को रिलीफ मिले, इसके लिए आज बातचीत हुई।
ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने बताया कि इस फैसले के बाद अब नागरिकों के लिए ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें दर्ज कराने और प्रभावी कार्रवाई करवाने का रास्ता आसान हो गया है। विभाग के अनुसार इस कदम से विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और जानवरों को राहत मिलेगी। इस निर्णय पर श्री सिरसा ने कहा कि ये मुद्दा काफी समय से लंबित था। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि नागरिकों को इस समस्या से निजात मिल सके। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली सचिवालय में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा टैलेंट हंट योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस योजना का उद्देश्य नवोदित कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना पर श्री मिश्रा ने कहा कि इस पहल से दिल्ली के सितारों को उड़ान का अवसर मिलेगा और बिना भेदभाव के सभी हुनरमंद लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की है और एक मत से अपना समर्थन व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के कई नेता शामिल हुए। श्री सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में उन्हें जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक को रचनात्मक बताया।
ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है।
हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे।
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सशस्त्र सेनाओं की सराहना की है। उन्होंने सुझाव दिया कि द रेजिस्टेंट फोर्स TRF के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका को इसे आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राज्यसभा में सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और कम बारिश से प्रभावी ढंग से निपटना है। एक रिपोर्ट।
क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे तत्वों को बादलों में बदला जाता है ताकि बारिश की संभावना बढ़ाई जा सके। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 3,21,00,000 रुपए होगी। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को IIT कानपुर के दिशा निर्देश में संचालित किया जाएगा। श्री सिरसा ने बताया कि प्रोजेक्ट के संचालन से पहले सरकार को 13 अहम विभागों और एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे। ये ट्रायल इस महीने के अंत या अगले महीने में शुरू हो सकता है। इस चरण में कुल 5 ट्रायल्स प्रस्तावित हैं। ट्रायल के बाद वैज्ञानिक रूप से इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्लाउड सीडिंग वायु गुणवत्ता और वर्षा पर कितना प्रभाव डालती है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज शहर के द्वारका सेक्टर 8 में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा बनाए गए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाओं, ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति रुचि रखने वालों के लिए ये कॉम्प्लेक्स मील का पत्थर साबित होने वाला है। श्री सक्सेना ने कहा कि जीवन में खेलों की बड़ी भूमिका होती है और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने युवाओं से खेलों में अधिक से अधिक करियर बनाने का भी आग्रह किया।
खेलों के प्रति रुचि रखने वालों और या अपने को फिजिकली फिट रखने वाले की चाहत रखने वालों के लिए ये कॉम्प्लेक्स हमारे ख्याल से मील का पत्थर साबित। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भविष्य में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कम्बाइंड फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, स्केटिंग रिंग, पीट ट्रैक और एक चिल्ड्रन पार्क भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए तो इसको और समृद्ध बनाएगा जिसका फायदा अधिक लोग उठा सके।
दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज सचिवालय में दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में बस सेवाओं को और बेहतर, सुरक्षित और सुलभ बनाने को लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर दिल्लीवासी को बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिले। परिवहन मंत्री ने कहा कि उनका विभाग शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रौद्योगिकी के माध्यम से और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली लगभग 90 उड़ानें आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रद्द कर दी गईं। इनमें 11 अंतर्राष्ट्रीय और 79 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से कई घरेलू उड़ानें शनिवार तक रद्द कर दी गई थीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत सदैव वैश्विक शांति, वैश्विक बंधुत्व और वैश्विक कल्याण में विश्वास करता है। श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में आज इंडिया फाउंडेशन के कौटिल्य फेलो विद्यार्थियों के साथ बातचीत में ये टिप्पणी की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कौटिल्य के विचार शासन में एक ग्रंथ के रूप में हैं। ये शासन कला, सुरक्षा, राजा की भूमिका और निर्वाचित लोगों सहित शासन के हर पहलू के लिए विश्वकोश है। श्री धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौटिल्य के दर्शन को व्यवहार में उतारा है। उन्होंने राष्ट्रीय कल्याण के लिए व्यक्तियों के योगदान पर बल दिया। श्री धनखड़ ने कहा कि एक राष्ट्र की पहचान शिष्टाचार और अनुशासन से होती है। सत्ता और शासन के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्ता सीमाओं से परिभाषित होती है।
डेमोक्रेसी इज नर्चर्ड व्हेन वी आर एवर माइंडफुल ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ पावर। इफ यू विल गो डीप इनटू कौटिल्य फिलोसफी यू विल फाइंड All this converges only to one essence, nectar of governance, welfare of the people.
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2025 के अवसर पर आज दिल्ली विधानसभा में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे थैलेसीमिया रोगियों के लिए देखभाल, गरिमा और आशा से भरे भविष्य की दिशा में सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने थैलेसीमिया से जूझ रहे रोगियों और उनके परिवारों की दृढ़ता की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने वाहक स्क्रीनिंग और प्रसव के पूर्व परीक्षण की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा लोकनायक अस्पताल में उपलब्ध निःशुल्क एंटेनोटल टेस्टिंग दवाओं की जानकारी साझा की। श्री गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों और मीडिया से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने और जन जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। वहीं आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यरत चिकित्सक डॉ शिव आनंद मौर्य ने कहा कि इस बीमारी में सही खानपान और सतर्कता से सामान्य जीवन जिया जा सकता है।
जो बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो एक नॉर्मल लेवल पर बना नहीं रहता। नॉर्मल लेवल जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए मेल में वो 13 के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें मेल नॉर्मली जो थैलेसीमिया माइनर है जो ज्यादा कॉमन होती है उसमें हीमोग्लोबिन 9-10 के आसपास बना रहता है। तो इसमें हमें यही प्रॉपर चेकअप कराना होता है, ब्लड चेकअप। अगर हम हीमोग्लोबिन देखते हैं ज्यादा कम हो रहा है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज दिल्ली की डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी की स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। एक रिपोर्ट।
25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष युवा वर्ग के फाइनल में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने रजत पदक अपने नाम किया जबकि मध्य प्रदेश के साहिल चौधरी ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल महिला युवा वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र की शांभवी शरण शीर सागर ने स्वर्ण पदक जीता। पंजाब की लवण्या रावत ने रजत और कर्नाटक के हृदय श्री कोंडूर ने कांस्य पदक जीता। वहीं आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हो गई। महिलाओं के ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदकों के साथ दबदबा बनाया। झारखंड को 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक मिला जबकि बिहार ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में राजस्थान ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ अपना ट्रैक साइकिलिंग अभियान संपन्न किया। महाराष्ट्र ने 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और अब मौसम। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक में किफायती आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली, विद्युत क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक स्थलों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स को मंजूरी दी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज द्वारका सेक्टर 8 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर आज दिल्ली विधानसभा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।